शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 8 अगस्त है, साकार बाबा की मुरली। बाबा ने कहा कि बाबा तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, तो देह अभिमान में आने से ही विकर्म होते हैं, तो विकर्मों से बचने के लिए देह अभिमानी होकर रहना है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, तो वो ड्रामा में निश्चित है और अंत में वो सामने आता है। बाबा ने कहा तो कर्मातीत बनने के लिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, और इस जन्म में जो विकर्म किए हैं वो बाप को सच सच सुना देना है। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, और उन्होंने कृष्ण को चक्र दिखा दिया है कि उस चक्र से वो असुरों का घात करते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये सुदर्शन चक्र से किसी को मारते नहीं हैं, ये तो शास्त्रों में क्या क्या बैठ चित्र बना दिए हैं उन्होंने। बाबा आकर के तुमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं, 84 लाख जन्म भी नहीं है, क्योंकि अगर 84 लाख होंगे तो कितने साल लग जाएंगे सुनाने में, तुम तो 1 सेकंड में समझ जाते हो। फिर बाबा ने सेवा के लिए भी कहा कि बच्चों को सेवा के लिए विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे कैसे हम पर्चे बनाएं, क्या क्या लिखें उसके अंदर जो मनुष्यों को समझ में आए, और तुम एरोप्लेन से भी वो पर्चे गिरा सकते हो। फिर बाबा ने कहा जैसे भादो मास में ब्राह्मणों को खिलाते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उस समय तुम ब्राह्मणों की भी सेवा कर सकते हो, उनको बता सकते हो जैसे तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तो तुम कह सकते हो कि तुम भी सच्चे ब्राह्मण बन सकते हो, तो उन्हें बता सकते हो कि सच्चे ब्राह्मण पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण कौन है। तो सुनते हैं। मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। जो भी भोगना भोगनी पड़ती है तो ये थोड़े दिन की है, इसलिए कहते हैं धीरज धर मनवा धीरज धर। प्रश्न है, विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? विकर्माजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? किस बात पर ध्यान देना है? उत्तर है, जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी न आए, यही ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देह अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है। बाबा ने ये भी कहा कि कोई बाबा बैठ करके अच्छे बुरे कर्मों का फल नहीं देते, ये ड्रामा में अपने आप ही नंधा हुआ है। अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है ना। बाकी जन्मों के तो हम नहीं जानते, लेकिन इस जन्म के तो जानते हैं, तो वो तो सुना सकते हैं बाबा को। ओम शांति। बड़ी ते बड़ी मंजिल है याद की, बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है या सुनाने का शौक रहता है। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है, 84 के चक्र को समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं है। बाबा ने कहा पढ़ाई तो कोई कठिन नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं, जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया है। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? विष्णु जी को दिखाते हैं लेकिन श्री नारायण को नहीं दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा क्या उनको सुदर्शन चक्र है? फिर श्री कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें श्री कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राज योग सिखाते हैं, न कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। बाबा वो चक्र नहीं देते जो असुरों का घात करने की बात है, ये आसुरी स्वभाव खत्म करने की बात है। तो बाबा ने कहा असुर उनको कहा जाता जिनका आसुरी स्वभाव है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, कोई असुर अलग से नहीं होते। वो भी अगर आसुरी स्वभाव है तो वही मनुष्य असुर है, अगर दैवी स्वभाव है तो वही मनुष्य देवता है। तो बाबा ने कहा कोई असुर अलग से तो होते नहीं, ऐसे नहीं सुदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं, हम सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं, है ना, उनको पहले से स्क्रिप्ट मिली हुई होती है, उसी के अनुसार उन्हें एक्ट करना होता है। तो बाबा ने कहा वो हद के एक्टर्स तो जानते हैं, तो हमें भी जानना है? नहीं जानना है, हमें भी जानना है। तो यह है बेहद का ड्रामा, इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे। अब एक एक डायलॉग उनको पता होता है, अभी हमें तो इतना डिटेल में ये नॉलेज नहीं मिलेगी। वह तो करके 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट को जानते हैं। यह तो 84 जन्मों को जानना होता है, तो इतना लंबा कैसे जान सकते हैं? तो बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूं, ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि में यह बातें आ न सके, यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं, 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए। तुम तो सेकंड में जान जाते हो, यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है, 84 लाख वो तो सेकंड में थोड़े ही समझ सकते हैं। 84 लाख जन्म है ही नहीं, 84 लाख योनियां हैं भले, लेकिन 84 लाख जन्म नहीं। और इतनी योनियों में भी हम नहीं जाते हैं, मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ, अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। जो भी कुछ हमारे सामने आता है अभी, तो बाबा ने कहा थोड़े दिन है। विकर्म भस्म हो कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके, विकर्म तो होते आए हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। तो कर्म विकर्म ही होते हैं, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, देह अभिमान में आ गए, तो बाबा ने कहा कर्म विकर्म ही होते हैं। सत्ययुग में कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहां कोई विकार ही नहीं है। भगवान वच, तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूं। विकर्माचीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि उसमें चारों वर्ण दिखाए हैं। भाप विगर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा? अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। अगर कोई गुरु सिखाएगा तो सभी शिष्यों को सिखाएंगे, तो फिर बाबा कहते हैं वो परंपरा से चला आता, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए जब शिव बाबा खुद आते हैं तो ही वो हमें ये नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नोंद है, अनेक बार ये चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे, किया भी है और आगे भी करते ही रहेंगे। तुम वो ऑल राउंड पार्ट धारी, 84 जन्म लेना माना ऑल राउंड पार्ट बचाना, शुरू से लेकर अंत तक। क्रिश्चियन धर्म के लिए तो नहीं कहेंगे, बाबा ने कहा आदि से अंत तक पार्ट और कोई का है नहीं, तुमको ही बाप समझाते हैं। फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं, वो तो आते ही द्वापर युग के बाद हैं, जब आधा समय पूरा हो जाता है। तुम्हारा ऑल राउंड पाठ है। क्रिश्चियन धर्म के लिए ये नहीं कहेंगे कि सतयुग में थे, वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं, द्वापर शुरू होते भी नहीं आते, द्वापर के बीच में आते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, किसको भी समझा सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है जो राइटर्स बातें हैं वह छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए, है ना, लोगों को क्या क्या नई बातें हैं जो पता होनी चाहिए तो हम वो लिखें। बाबा ने कहा बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं सर्विस तो बहुत है, अब सारी दुनिया को संदेश मिल गया क्या, तो बाबा कहते हैं सर्विस तो कितनी है, तो करने वाले की बात है। यहाँ एकांत में बैठ यह काम करो, जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सब को जगाना है, सब को संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वो छट समझेंगे। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सत्ययुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं और यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। ये भी बाबा ने समझाया है, कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने, कुंभ का मेला लगता है तो लाखों लाखों की पब्लिक होती है एक एक दिन। क्यों स्नान करने जाते हैं, क्यों स्नान करने जाते हैं, पाप कट जाए, पावन होना चाहते हैं। तो जहां जहां मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहां जाकर सर्विस करनी चाहिए। अब कुंभ का मेला भी एक जगह नहीं लगता है, चार जगह लगता है, हर तीन साल में उसकी जगह बदलती जाती है। तो बाबा ने कहा जहां जहां भी मनुष्य स्नान करते हैं वहां जाकर सर्विस करनी चाहिए। तो अपने हमेशा जहां भी कुंभ का मेला होता है अपने बाबा के बच्चे जो हैं वो स्टॉल बनाते हैं वहां पर पूरा, और फिर पूरे कुंभ के मेले के समय बहुत अच्छी सेवा वहां चलती है। तो बाबा ने कहा मनुष्यों को समझाना चाहिए यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है, तुम्हारे पास चित्र भी हैं, गीता पाठशालाओं में जाकर यह पर्चे बांटनी चाहिए। माना जो दूसरी प्रकार की गीता पाठशाला, एक हमारी गीता पाठशालाएं होती हैं लेकिन और भी जो गीता सुनाते हैं, बच्चे सर्विस मांगते हैं, ये बांट कर लिखो। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है ना कि श्री कृष्ण, फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आपे ही वह जज करेंगे। यह पॉइंट्स भी लिखने हैं कि पतित पावन कौन, फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। पतित पावन वो पतित पावनी गंगा है या शिव बाबा है, पावनी का ये भेद भी लिखना है, और फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है शंकर अलग है, ये भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं न कि 84 लाख। ये मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, सब नई नई बातें हैं ज्ञान की, तो बाबा ने कही सब लिखनी चाहिए। जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है इसमें क्लियर है ना, वो जो चक्र है अपना, फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं, यह गोला भी होना चाहिए। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हैं, तो सभी सेंटर्स पर तो होते ही हैं, कोई कोई अपने घरों में भी लगाते हैं। तो बाबनी का जो अपने मुख्य मुख्य चित्र हैं वो सबके कैलेंडर होने चाहिए, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। यह चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, वह बैठ लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो, गुप्त वेश में कर रहे हैं, कोई तो जानते नहीं, अननोन वॉरियर्स हो, तुमको कोई नहीं जानते ना, क्या कर रहे हैं ये कोई भी नहीं जानते। बाबा भी गुप्त और नॉलेज भी गुप्त, शिव बाबा तो है ही गुप्त, फिर बाबा की नॉलेज भी इतनी प्रत्यक्ष नहीं होती, इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं, और धर्म स्थापक आदि के बाइबल पुस्तकें छपते हैं जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं, सभी धर्मों के अपने अपने पुस्तक बने हुए हैं, उनका बाइबल, उनका कुरान, फिर बौद्ध धर्म का धम्मपद है वो बना हुआ है, तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, श्रीमद् भगवद गीता द्वापर युग में जाकर फिर छपती है, बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाबा ने कहा अभी ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं, बाप कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते हैं, वह तो नॉलेज फुल है, नॉलेज फुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं, वो सबके दिलों को जानने वाला है, अंतर्यामी है, जानी जाननहार है, वो सबके अंदर को जानता है। तो बाबा ने कहा मैं सबके अंदर को नहीं जानता हूँ, क्या हूँ, नॉलेज फुल। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं, लोग ऐसा समझते हैं, क्योंकि भगवान को पता है हम क्या क्या कर्म कर रहे हैं, तभी तो कर्मों का फल देते हैं। बाप कहते हैं ये ड्रामा में नूंद है, ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है ना, जैसे ऑटोमेटिक मशीनरी बनी हुई है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं कि इस कर्म का ये फल मिलने वाला है, इसका ये मिलने वाला है, मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है, आत्मा दूसरे जन्मों तक भी अपने कर्मों का फल ले जाती है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है, इसलिए बाबा कहते हैं ना साक्षात्कार भी होते हैं कि तुमने ये कर्म किए, हमने यह पाप किए हैं, सब याद आता है, जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा, फिर नेक्स्ट जन्म भी उसका असर इस रूप में होता है। अभी तुम विकर्माचीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए, बड़े तो बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं बार बार, देह अभिमानी बनो, कोई मुरली ऐसी नहीं होती बाबा की जो बाबा नहीं कहते। तो बाबा ने कहा बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, पवित्र तो रहना ही है, सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसीलिए सन्यासी भी कहते यह काग विष्ठा समान सुख है, वहां दुख का नाम नहीं होता। सतयुग में दुख का नाम निशान भी नहीं है और यहां दुख ही दुख है, है ही दुख की दुनिया दुख धाम, ना ही दुख धाम है। तो बाबा ने कहा यहां दुख ही दुख है, इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, लेकिन वो है हद का वैराग्य, घर बार छोड़कर चले जाते हैं। परंतु वह जंगल में चले जाते हैं, उनका है हद का वैराग्य, और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये दुनिया ही छीछी है, सब कहते हैं बाबा आकर हमारे दुख हर कर सुख दो। किस लिए याद करते हैं भगवान को? इसीलिए याद करते हैं क्योंकि वो दुख हरता सुख करता है। बाप ही दुख हरता सुख करता है, तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़े ही समझते हैं कि हम नरक में हैं। उसके लिए भले कहेंगे कि वो स्वर्गवासी हुआ, तो बाबा ने कहा खुद के लिए, लेकिन ये नहीं समझते कि हम नरक में हैं। हम जब मरे तब स्वर्ग में जाएं, परंतु वह भी स्वर्ग में गया या यहाँ नरक में आया वो भी पता नहीं। जिसको कहा स्वर्गवासी हुआ, क्या वो सचमुच स्वर्गवासी हुआ? बाबा ने कहा ना, तो ये भी नहीं पता कि वो फिर से नरक में जन्म लेगा। कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे तीन बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। दो बाप तो सब समझते हैं, कौन से दो बाप? एक शिव बाबा और दूसरा लौकिक बाप, लेकिन तीन बाप तीसरा कौन? ब्रह्मा बाप। तो बाबा ने कहा लौकिक और पारलौकिक और यह अलौकिक, प्रजा पिता ब्रह्मा। फिर है यहां संगम युग पर ब्राह्मण भी चाहिए ना, वही ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुखवंशावली थोड़े ही है। जो दुनिया के ब्राह्मण है वो तो जन्म से ब्राह्मण है, जानते हैं ब्रह्मा था इसलिए ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण और वह है कलयुगी। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो बच्चों को सब पॉइंट्स धारण करनी है और सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, कोई भी पूजा कराते हैं आज दुनिया में घरों में, तो ब्राह्मण को ही बुलाते हैं और श्राद्ध के दिनों में तो बुलाते ही बुलाते हैं। तो बाबा ने कहा उनसे भी तुम चिटचैट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, श्रावण मास के बाद कौन सा आता है? भादों। तो सभी पितरों को खिलाते हैं, वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। तो ऐसे भी नहीं कि पितरों को खिलाना ही बंद कर दो। तो बाबा ने कहा वो युक्ति से करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे नाराज हो। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो, जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना, तो ये भी उनकी सेवा करने की युक्ति है। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। बस अभी ये शुरू हो जाएगा, राखी पूरी हुई उसके बाद भादो मास शुरू हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया। उनसे पूछ सकते हैं, ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया, तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहां बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाते हैं। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अब आप अमरनाथ की यात्रा कर रहे हो तो पता तो होना चाहिए ना, अमरनाथ कौन है, क्या अमर कथा सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा उनको ऐसे कहना चाहिए, ऐसे ऐसे सर्विस करने पड़े, वहां पैदल जाना पड़ता है क्योंकि पहाड़ी है और ऐसे कोई रास्ते तो बने हुए नहीं है जो गाड़ी जाए, तो कैसे जाते हैं लोग पैदल। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो, तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो, सभी का कल्याण करना है, चाहे वो साधु संत हो। जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा आकर के सबका उद्धार करते हैं, साधु संतों का भी उद्धार करते हैं। तो श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से धारणा सार है, जब एकांत व फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है, जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। वरदान, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भाव। अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्य को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भाव। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भाव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। पता है कि सब कुछ हुआ ही पड़ा है और हम क्या कर रहे हैं, निमित्त मात्र उसको रिपीट कर रहे हैं कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा निमित्त बन कार्य करते हैं, दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती, और आप कहते हो ये कार्य अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ ही पड़ा है। हमारे लिए तो निश्चित है कि होना ही है और हुआ ही पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। साथ साथ परमात्मा कार्य सदा सफल है ही। स्लोगन, कहना कम करना ज्यादा, यह श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। कहना कम करना ज्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देगा। अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है एक बाप से अटूट प्यार। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ, बाबा को साथी बना के कर्म करते हैं। ऐसी लवली स्थिति में रहे, एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। बाबा की याद में जो भी बोल बोलेंगे वो दूसरी आत्मा को भी बांध देंगे, माना उनके दिल को भी लगेंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। दादी जी की विशेषता, दाता की बच्ची दाता, देना ही जीवन की महानता। दादी जी सदा दाता की बच्ची दाता बनकर रही। दादी जी कहती कि बाबा ने मुझे देना सिखाया है, जितना मैं दूंगी उतना मेरा महत्व है। एक एक को रूहानियत देना, शीतलता देना, सम्मान देना, यह देना ही मेरी महानता है। ऐसे नहीं मैं इसे इतना स्नेह देती फिर भी यह मेरी ग्लानी करता। मेरा काम है सबको आत्मिक स्नेह का दान देना। दान देने में विघ्न तो अनेक आएंगे, क्योंकि दान लेने वाला कोई कैसा है कोई कैसा। मैं हमेशा समझती हर एक मेरे मास्टर है, मैं हर एक से सीखती हूं। ऐसे आप सभी भी सबको देते चलो तो देवता बन जाएंगे। तो बाबा भी कहते हैं कोई कैसी भी आत्मा हो मुझे क्या करना है, देना है, देना है, वो भी दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। ओम शांति।
शांति। फरीदकोट से जो भट्टी में आए हुए भाई बहने हैं, क्लास के तुरंत बाद आप सभी यहां पर ही बैठे रहेंगे। आज आप सभी को बाबा के घर से याद सौगात मिलेगी। और भट्टी में जो 15-20 भाई बहने होते हैं जो सेवा देते हैं अलग अलग विभागों में जाकर के, तो वो भी अगर सेवा में हो तो यहां ही आकर वापस उपस्थित हो जाएं, क्योंकि सौगात सभी को यहां ही स्वीकार करनी है। अभी शशिबेन जी आएंगे और हम सभी को, सभी भट्टी वालों को सौगात देंगे, तो सभी बैठे रहेंगे। अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं।